कार्तिकेयनु प्रेक्षा लेक्चर नंबर 3 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं
नमो लोए सवसाहूणं
त्रिभुवन तिलकं देवं वंदित्वा त्रिभुवनेन्द्र परिपूज्यं वक्षे अनुप्रेक्षाः भविक जनानंद जननी। यह कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक शास्त्र जो कार्तिकेय स्वामी ने लिखा है और उसके ऊपर जो स्वामी जी के प्रवचन है, उस प्रवचन के पुस्तक के भाग एक के हम पृष्ठ क्रमांक 8 पर आए हैं। यहाँ कल बात ये हो रही थी कि जो 5 परमेष्ठी हैं वह क्रीड़ा करते हैं, उनके विजिगिषा होती है, उनके द्युति है, स्तुति है, प्रमोद है, गति है इत्यादि बात उन हमने कल देखी थी। अब हम पृष्ठ 8 पर आए थे और यह देखा है कि जो स्वात्म जनित जो परम आनंद है उसके साथ इन 5 ही परमेष्ठियों की क्रीड़ा चलती है और जो देवगति के जीव जो है वे भी क्रीड़ा सहित ही होते हैं, फिर भी इन दोनों की क्रीड़ाओं में अंतर है, डिफरेंस है। वे तो बाह्य इंद्रिय जनित क्रीड़ाओं में या बातों में अटके हुए हैं और ये कैसे हैं स्वात्मजनित आनंद जो होता है उसमें क्रीड़ा करते हैं। अभी क्या कहा, कर्म ने जीतवा रूप विजिगिषा, कर्म ने जीतवा रूप विजिगिषा सहित छे, तेथी पंच परमेष्ठी भगवंतो देव छे। सिद्ध भगवाने 8 कर्मों ने जीत्या छे तेथी तेमने विजिगिषा क्रिया छे अने ते देव छे। क्या बताना चाहते हैं, उनका यह जो कोई जीतने का जो कुछ किसको जीत रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो कर्मों को जीत रहे हैं और यही इनकी विजिगिषा क्रिया है। अरंतो ये 4 कर्मों ने जीत्या छे तेथी ते पन देव छे अने आचार्य उपाध्याय साधुपन आत्माना आनंद स्वभावना अवलंबने दर्शन मोहने तेमज 3 कषायने जीती लीधा छे, तेथी तेवो पन देव छे। आवी विजिगिषा नामनी क्रिया तेमने छे। यहाँ 5 ही परमेष्ठियों की अपेक्षा से ये बात बताई जा रही है। जो आ पंच परमेष्ठी भगवंतोनी क्रियानु वर्णन छे, चिदानंद स्वभावनी लीनतामा रहीने आनंदना अनुभव क्रीड़ा करे छे, ने कर्मने जीतवा रूप विजिगिषा छे, आवी क्रिया तेमने वर्ते छे, तेथी तेवो देव छे। आवा देव वंदनीय छे, आ सिवाय बीजा कुदेवने वंदन करवा जेवू नथी। 5 परमेश्वरीने आई देव कह्या छे, आत्माना अनुभवनो आनंद तेमने प्रकट्यो छे, ने विकारने जीतीने कर्मनो नाश कर्यो छे। ये बात समझ में आ रही है? अभी कहते हैं स्वात्मजनित ज्ञान प्रकाश रूप द्युति। देखो क्या है, यहाँ जो प्रकाश है यानी कोई जो लाइट है वह कैसा है तो स्व को भी प्रकाशता है और पर पदार्थों को भी प्रकाशता है। ऐसा इस जीव का जो स्वात्मजनित ज्ञान जो है, यानी कैसा सम्यक रूप से परिणमित ऐसा जो ज्ञान है, वह भी स्वपर प्रकाशक है और उसकी द्युति यानी प्रकाश फैला हुआ है। वड़ी तेमने स्वात्मजनित प्रकाश रूप, ऊपर लिखा ज्ञान प्रकाश रूप, यहाँ केवल कह रहे प्रकाश रूप द्युति छे। अरहंत ने सिद्ध भगवंतों ने तो केवल ज्ञान प्रकाश असंख्य प्रदेशे प्रकट्यो छे, ने आचार्य उपाध्याय तथा साधु ने पन आत्मान चिदानंद स्वभावना अंतर अवलंबने ज्ञान नो प्रकाश प्रकट्यो छे। शास्त्रना भणतरनी वात नथी, पन आत्माना अवलंबने प्रकटेला स्वात्मजनित प्रकाश नीज आ वात छे। यानी कोई बहुत कुछ सीखा हुआ है, जानकार है, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं है, तो वो उसका ज्ञान का प्रकाश नहीं है। लेकिन जिसने अपने आत्मा का अनुभव किया है, ऐसे जो पंच परमेष्ठी है, उनका जो स्वात्मजनित जो प्रकाश ज्ञान प्रकाश है, उसकी द्युति यानी उसका जो प्रकाश है उसकी बात की है। अभी क्या कहते हैं, स्वस्वरूपनी स्तुति। तो स्वस्वरूपनी स्तुति का अर्थ क्या हुआ? हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, तो उसमें स्तुति क्या करी? हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं अपने स्वभाव का स्वरूप का अनुभव करना, उसी में एकाग्र रहना, यही उसकी स्तुति है, यह निश्चय स्तुति है। ओ, और हम भगवान के सामने खड़े रहकर उनकी जो स्तुति करते हैं वह व्यवहार स्तुति है, और ऐसी व्यवहार स्तुति भी सम्यक दृष्टि की होती है। और बहुत ही खींचातानी करके सुनना है तो जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसे जो जीव भगवान की स्तुति करते हैं उनको व्यवहार की स्तुति कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं ना, तो उनको व्यवहार आभास कहेंगे भाई। बात तो कड़क है, लेकिन हमें समझना तो चाहिए, नहीं तो हम और चक्कर में कहीं फंस न रहे। तो क्या कहते, देखो ये बात आपको याद होगी तो समय सार में गाथा 31, 32, 33 इसमें आई है। क्या 32, 33, 34 में आई है? 31, 32, 33 में आ। पंच परमेष्ठी भगवंतो स्वस्वरूपनी स्तुतिनी क्रिया करे छे, परनी स्तुतिनो भाव तो राग छे पुण्य छे। पंच परमेष्ठी भगवंतो निज स्वरूप में एकाग्र थईने तेनी ज स्तुति करे छे, स्वस्वरूप नु ज अनुमोदन करे छे, वच्चे राग व्यवहार आवे तेनु अनुमोदन करता नथी। जे जीव रागनी के परनी स्तुति थी धर्म माने छे ते तो मूड छे। अखंड चिदानंद स्वरूपनी स्तुति बहुमान चुकीने एकली परनी स्तुति मां रोकाय तो ते पण मिथ्या दृष्टि छे, तेवाने आय परमेष्ठी मां गण्या नथी। अरहंतोने आने सिद्धने जो है ने सिद्धिने थई गयु छे। अरहंतोने आने सिद्धोने चाहिए वैसे तो स्वस्वरूपनी पूर्ण स्तुति थई गई छे, ने आचार्य उपाध्याय तथा साधु पण वितराग भावे स्वस्वरूपनी स्तुति करे छे। सम्यक दर्शन वगर स्वस्वरूपनी स्तुति होय नहीं। लिख दिया ना इधर। और क्या कह रहे हैं, स्वस्वरूप मां परम प्रमोद, प्रमोद मोद याने आनंद, प्रमोद याने विशेष रूप से आनंद। पंच परमेष्ठी ने स्वस्वरूप मां परम प्रमोद वर्ते छे, धर्मी ने पोताना शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप मां ज परम प्रमोद ने उत्साह छे।
पोताना
पोतनो थई गयो छे,
वो पहले आया, उसका मात्रा पहले आ गई।
रखो। શું કહે? ધર્મીને પોતાના શુદ્ધ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપમાં જ પરમ પ્રમોદ અને ઉત્સાહ છે, બહારમાં માન આબરૂનો પ્રમોદ નથી, ઘણા પરજીવો સમજી જાય તેનો પ્રમોદ નથી, પણ ક્યા કહેતે હૈ યે જો પંચ પરમેષ્ઠી મેં તો રાગી તો યે તીન હી સાધુઓ કે જો પ્રકાર હમને દેખે ઉનમેં ભી અભી રાગ વિદ્યમાન હૈ તો ઉનમેં તો યે બહાર મેં માન આબરૂ કી તો બાત હી નહીં હૈ, ઉસકા તો પ્રમોદ ઉનકો હોગા હી નહીં, પરંતુ હમ જો બાત બતાના ચાહતે હૈ એસે સારે જીવ સમજે ઇસલિયે પ્રમોદ હો જાય એસી ભી ઉનકી અવસ્થા નહીં હોતી, ઘણા પરજીવો સમજી જાય તેનો પ્રમોદ નથી, પણ જ્ઞાનાનંદ વિતરાગી સ્વરૂપમાં જ તેમને પરમ ઉત્સાહ ભાવ વર્તે છે, તેથી સ્વસ્વરૂપમાં જ પરમ પ્રમોદ છે, રાગમાં નિમિત્તમાં કે વ્યવહારમાં તેમને પ્રમોદ કે ઉત્સાહ વર્તતો નથી, આવા પંચ પરમેષ્ઠી છે। લોકાલોકને જાણવારૂપ જ્ઞાનની ગતિ, લોકાલોકમાં વ્યાપ્તિરૂપ ગતિ છે, એટલે તેમનું જ્ઞાન લોકાલોકને જાણી લે છે, વ્યાપ્તિરૂપ યાને સમજમાં આવે? હા વિરેશભાઈ, વ્યાપ્તિરૂપ યાને ક્યાં? હા હા, ફેલાઈ ગયું ને? નહીં, અભી હમ લિટરલી પહેલા અર્થ દેખતે હૈ, આપકા કહેના બરાબર હૈ, પણ વ્યાપના યાને આપને બતાયા પ્રસરના, વ્યાપના યાને ઓક્યુપાય કરના, આપ કિતની જગા વ્યાપતે હો તો ભાઈ 2 ફૂટ બાય 2 ફૂટ, આપકા બિલ્ડિંગ કિતની જગા વ્યાપતા હૈ તો કહેતે હૈ 200 ફૂટ બાય 200 ફૂટ, 4000 સ્ક્વેર ફૂટ કા બિલ્ડિંગ હૈ, એસા હમ કહેતે ને, તો એસા ઇનકા જ્ઞાન દેખો, યે ક્યું એસી બાત બતા રહે હૈ, ક્યું જ્ઞાન લોકાલોકને વ્યાપી રહ્યું છે, અન્ય મત મેં એસી માન્યતા હૈ કે યહ ઈશ્વર જો હૈ વહ ચરાચર મેં યાને પૂરે લોક મેં વ્યાપ્ત હૈ, જહાં ભી આપ દેખો વહાં ભગવાન મૌજૂદ હૈ, યે ઉનકી સ્ટોરી મેં આતા હૈ ના, નહીં વો નરસિંહ અવતાર લેતા હૈ તો એસા પિલર રહેતા હૈ, ભગવાન કિધર હૈ? બોલે સર્વત્ર હૈ, કહાં? અરે જહાં તુમ કહો, તો યે પિલર મેં હૈ, હા યે થાંભલે મેં ભી હૈ, વો લાત મારતા હૈ, કોણ? વો પ્રહલાદ કા પિતા, તો ઉસમેં સે વો નરસિંહ આતા હૈ, ઓર વો લોગ એસા માનતે કે ભગવાન કિધર નહીં હૈ, સાફ જગહ હૈ, તો એસા ભગવાન કભી પૂરે લોકાલોક કો વ્યાપતા નહીં, તો વ્યાપતા કોણ હૈ? જ્ઞાન, કોણ સા? કેવલ જ્ઞાન, વૈસે થોડા સા દેખા જાય તો જબ કેવલ જ્ઞાની જબ કેવલી સમુદ્ઘાત કરતે હૈ, સભી નહીં જો કોઈ કરતે હૈ, તો ઉનકે ભી આત્મા કે પ્રદેશ પૂરે લોકાલોક મેં વ્યાપતે હૈ, પણ વો વ્યાપના હમારે લીએ કોઈ માયના નહીં રખતા હૈ, હમારે લીએ યાને જૈન દર્શન કે અનુસાર ઉસકી કોઈ ખાસ બાત નહીં, લેકિન જો કેવલ જ્ઞાની હૈ ઇનકા જ્ઞાન તો પૂરે લોકાલોક મેં ફેલા હુઆ હૈ, ઓર આત્મા કે પ્રદેશ કેવલ લોક મેં હૈ, ઓર હમ વિશ્વ કિસે કહેતે હૈ? 6 દ્રવ્યો કે સમૂહ કો, તો 6 દ્રવ્યો મેં આકાશ દ્રવ્ય તો ઇતના બડા હૈ કે જો લોકાકાશ કે બહાર જો અલોકાકાશ હૈ વહાં તક કે ઉસકી ફેલાવ હૈ, યાને કોઈ મર્યાદા હી નહીં, ઇતને અનંત પ્રદેશ થી હૈ, ખ્યાલ મેં આયા ના? તબ દેખો, અભી અભી હમ દેવલાલી ગયે થે તો વહાં અસંખ્યાત ઓર અનંત કી બાત બતાઈ થી, તબ અભી અનંત યાને ક્યા હો સકતા હૈ ઇસકા હમ ઇમેજિન કર સકતે હૈ, તો ક્યા કહેના? તો ઇનકા જ્ઞાન પૂરે પૂરે લોકાલોક મેં પ્રસર ગયા હૈ, જાન રહા હૈ સબકો, ઇસલિયે કહેતે કે યે અભી માન લો, યે તુમ્હારા કોઈ એસા એક લો ના ભાઈ, ક્યા નામ હૈ, માઇકલ જેક્સન, તો રહેતા કિધર? દૂસરે વિદેશ મેં, लेकिन दुनिया के कोने कोने तक उसका नाम गया है। जैसे अपने यहाँ का अमिताभ बच्चन है जो, या हमारे राजीव गांधी है, या तो महात्मा गांधी है, उनकी कीर्ति पूरे लोकालोक में फैली हुई है, तो वो तो उधर ही है कीर्ति। वैसा ये ज्ञान सब जगह फैला हुआ इन द सेंस जान रहा है प्रत्येक वस्तु को, तो इसलिए वो लोकालोक व्याप्ता है ऐसा कहते हैं। तो क्या बताया, देखो लोकालोक में व्याप्ति रूप गति छे एटले वहां तक वो पहुंचते हैं, एटले तेमनु ज्ञान लोकालोक ने जानी ले छे। अरिहंता ने सिद्ध तो लोकालोक ने साक्षात जाने छे, ने भावश्रुत ज्ञान ना बड़े। ये भावश्रुत ज्ञान क्या होता है, कल बताया था, याद है? हाँ विनेश भाई, भावश्रुत ज्ञान किसको कहा था आपको याद है? द्रव्य श्रुत ज्ञान किसको कहा था? कल ही तो बात निकली थी। हाँ आगम शास्त्र ज्ञान को द्रव्य श्रुत ज्ञान, और भाव श्रुत ज्ञान, जोर से बोलो। हाँ, अपने स्वभाव का अनुभव जिनके हुआ है, जिसके सम्यक ज्ञान कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? भाव श्रुत ज्ञान, यानी आत्मा का अनुभव जो हुआ है उसके एना बड़े। यहाँ क्या लिखा? श्रुत ज्ञान ना बड़े, यानी उसके बलबूते पर आचार सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान से भी आत्मा का अनुभव रूप जो ज्ञान है, इसीलिए उसका नाम सम्यक ज्ञान पड़ा। अभी ऐसा भी हो सकता है, हाँ, उसके बलबूते पर यानी उसके आधार से आचार्य उपाध्याय ने साधुपन लोकालोक ने जाने छे। क्योंकि जब वो लोकालोक को जानते होंगे तब आत्मा को जानते होंगे कि नहीं? फिर से, आचार्य उपाध्याय और साधु जब लोकालोक को जानने में उनका उपयोग लगा होगा तब अपने आत्मा को जानते होंगे कि नहीं? हाँ देखो, छद्मस्त का उपयोग एक समय एक ही जगह लगेगा, या तो सो में लगेगा या तो पर में लगेगा, या शुद्ध परिणति की बात नहीं हो रही। अब मान लेते हैं हम यहाँ पर सभी सम्यक दृष्टि है, मान लेते हो, और अभी हमारा उपयोग क्या लग रहा है? लोकालोक के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो जब जानकारी ले रहे तब हम आत्मा का अनुभव कर रहे हैं क्या? क्योंकि उपयोग या तो पर में लगे या तो स्व में लगे, बात ख्याल में आती है? तो क्या कहा, देखो, भाव श्रुत ज्ञान ना बड़े, यानी वो आत्मा का अनुभव किया है, और ये जो लोकालोक ने जाने छे, और जो मिथ्या दृष्टि है वह भी लोकालोक को जानेगा, फिर भी उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहेंगे। लोकालोकना द्रव्य गुण पर्याय नो पत्तो जेमना ज्ञान मा अवी गयो छे एवी तेमना ज्ञाननी गति छे, एटले के परिणमन छे। अंदर मा तेमने सम्यक ज्ञान नो दीवड़ो खिली गयो छे, ने लोकालोकना बधा भावो नो निर्णय करवामां जेमना ज्ञाननी गति पहुंची वळे छे एवा साधु होय छे, ने एवा साधु परमेष्ठी ते वंद्य छे। आवा साधु ने ओळखीने तेमने वंदन करे ते खरो सेवक छे। वंद्य याने वंदन करने योग्य, जिनका हम वंदन कर सकते हैं वो हमारे लिए वंदनीय है, वो हमारे लिए वंद्य है। कहाँ गया वंद्य? अगले पृष्ठ पे है क्या? वंद्य छे, हाँ, आवा साधु परमेष्ठी ते वंद्य छे, यानी वो वंदन करने योग्य है। अभी सातवां पॉइंट क्या है? शुद्ध स्वरूप मा प्रवृत्ति रूप कांति। शुद्ध स्वरूप मा प्रवृत्ति रूप कांति छे, यानी जो स्वस्वरूप में लीन हो रहा है वो उसके लिए कांति जैसी है बात। આવી પંચ પરમેશ્વરની ક્રિયા છે. બહારની શરીરાદિની કાંતિ તો જળ છે, પણ ચૈતન્ય પ્રકાશથી ઓપિત, ઓપિત અને પરિપૂર્ણ, ને શું કહેવાય છે ઓપિત એટલે, અરે ગુજરાતી, પ્રકાશથી પૂરેપૂર, ચૈતન્ય પ્રકાશથી ઓપિત એવા શુદ્ધ સ્વરૂપમાં પ્રવૃત્તિ છે, તે જ પંચ પરમેશ્વરની ક્રાંતિ છે. આવા પરમેશ્વરી જીવોની યથાર્થ ઓળખાણ પૂર્વક, યથાર્થ ઓળખાણ પણ જીવોએ પૂર્વે કદી કરી નથી. અહીં સાત પ્રકારથી વર્ણન કર્યું છે. દેખો યહાં પંચ પરમેશ્વરી ભી, અનંત ભી આ ગયે, સિદ્ધ ભી આ ગયે, હૈ ના, તો ઇનકી પહેચાન ઇસ જીવને આજ તક નહીં કી. અપને મન મેં એસા પ્રશ્ન આતા હૈ કે અગર કિસીને ઉસકી પહેચાન કર લી હૈ, સહી રૂપ સે જાના હૈ, તો ક્યા હોગા? હા ડોક્ટર, મેને ક્યા પૂછા, યે પંચ પરમેશ્વરી કહા ના, અબ ઉનકી યે ઓળખાણ પણ જીવોએ પૂર્વી કદી કરી નથી. અગ વો બાય ચાન્સ કર લેવે, યાને યથાર્થ ઓળખાણ, તો ક્યા હોગા? વહી તો મેં પૂછ રહા થા, હા, વો સમ્યક દ્રષ્ટિ હો જાયેગા. ક્યા કહેતે, હા વહી તો આપને બતાયા, સમ્યક દ્રષ્ટિ હો જાયેગા, બરાબર. અભી અહીં સાત પ્રકારથી વર્ણન કર્યું, પરમ સ્વાત્મજનિત આનંદ સહિત ક્રીડા, કર્મને જીતવા રૂપ વિજિગીષા, સ્વાત્મજનિત જ્ઞાન પ્રકાશ રૂપ દ્યુતિ, સ્વસ્વરૂપની સ્તુતિ, સ્વસ્વરૂપમાં પરમ પ્રમોદ, લોકાલોકને જાણવા રૂપ જ્ઞાનની ગતિ, અને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં પ્રવૃત્તિ રૂપ કાંતિ. યાને અગર હમ થોડા સા ઇસકે આખરી શબ્દ કો દેખતે જાયેંગે તો ક્રીડા, વિજિગીષા, દ્યુતિ, સ્તુતિ, પરમ પ્રમોદ, ગતિ યા જ્ઞાનની ગતિ, કાંતિ, યે સબ સાત પોઈન્ટ ઉસમે આ જાતે હૈ. આમ સાત પ્રકાર કહ્યા તે દેવપનાની ઉત્કૃષ્ટ ક્રિયા છે. જેનામાં આવી ક્રિયા ન હોય તેને વિતરાગ શાસન દેવ તરીકે સ્વીકારતું નથી. આત્માની ઉત્કૃષ્ટ પવિત્ર ક્રિયા અર્યંત અને સિદ્ધને પૂર્ણ છે, ને આચાર્ય ઉપાધ્યાય તથા સાધુઓને પણ તે અંશે હોય છે. તેથી આવા પરમેશ્વરી ભગવંતો જ ઉત્કૃષ્ટ દેવ છે, તેવો જ મંગળરૂપ છે, અને તેવો જ નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે. આ સિવાય બીજા કોઈ ખરેખર દેવ નથી, ને તે વંદ્ય નથી, યાને વો પૂજનીય નહીં હૈ, વંદન કરને યોગ્ય નહીં હૈ. પંચ પરમેશ્વરીને યથાર્થપણે ઓળખનારો સમ્યક દ્રષ્ટિ જ હોય, ને તેવા સમ્યક દ્રષ્ટિને જ યથાર્થ બાર વૈરાગ્ય ભાવનાઓ હોય છે. કુદેવાદીને માને તેને યથાર્થ વૈરાગ્ય ભાવનાઓ હોતી નથી. હવે મંગલનો અર્થ કહે છે, યે મંગલ સ્વરૂપ હૈ એસા કહા ના, યે પંચ પરમેશ્વરી, તો કહેતે હૈ મમ એટલે પાપ, તેને ગલ એટલે ગાળે, તથા મંગ એટલે સુખ, તેને લ એટલે લાતી દદાતી, યાને લાતે હૈ ઓર દેતે હૈ અર્થાત આપે, તેને મંગલ કહીએ છે. આપ એસા બોલતે ના, એ જા એક ગ્લાસ પાણી લ્યા, પાણી લાવ, ગુજરાતી મેં બોલતે ને, તો એ લાતી દેતે હૈ ઇસ તરહ. એવા દેવને નમસ્કાર કરવાથી શુભ પરિણામ થાય છે, અને તેનાથી પાપનો નાશ થાય છે, શાંત ભાવરૂપ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. આત્માનું ભાન કરીને તેનો આશ્રય કરતા પાપનો નાશ થઈ જાય છે. ખરેખર તો આત્માના જે ભાવથી પવિત્રતા પ્રગટે તેને પાપ ટળે એવો વિતરાગ ભાવ તે જ માંગળિક છે, ને નિમિત્ત તરીકે આત્માની પવિત્રતા પામેલા પંચ પરમેષ્ઠી ભગવંતો માંગલિક છે. ક્યા કહા હમ બોલતે ના, ચત્તારી મંગલમ, અરિહંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ, સાહુ મંગલમ, યે કૈસા હૈ? તો કહેતે યે તો મંગલ જો કહા હૈ વો તો ઉપચાર સે કહા હૈ, લેકિન કેવલી પન્નત્તમ ધમ્મમ શરણમ પહોંચામે ગયા. ક્યા કહા મેને? ઠેરો, ચત્તારી મંગલમ, અરિહંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ, સાહુ મંગલમ, કેવળી પન્નતો ધમ્મો મંગલમ, યાને જિનેન્દ્ર ભગવાન ને બતાયા હુઆ ધર્મ હિ મંગલ હૈ. તો એ કોણ સા ધર્મ હૈ? કે સ્વસ્વરૂપ કા આશ્રય લેના, યે જિનેન્દ્ર ભગવાન ને જો વાત બતાઈ હૈ વહી મંગલ સ્વરૂપ હૈ. તો વહી વાત યહાં બતા રહે, દેખો યે જો 11 પૃષ્ઠ પર આખરી લાઈન હૈ ના, લાસ્ટ મેં શાંત ભાવરૂપ પરિણામ થાય છે કેને? એક મિનિટ, હા, ઉપર સેકન્ડ લાઈન, ખરેખર તો યે ફર્સ્ટ લાઈન હો ગઈ, થર્ડ લાઈન હો ગઈ અભી. આત્માના જે ભાવથી પવિત્રતા પ્રગટે ને પાપ ટળે એવો વિતરાગ ભાવ તેજ માંગળિક છે. યે વિતરાગ ભાવ કબ હોગા? કે જબ અપને સ્વરૂપ મેં એકાગ્રતા હોગી તો હી ઉસકો વિતરાગ ભાવ હોગા. ને નિમિત્ત તરીકે આત્માની પવિત્રતા પામેલા પંચ પરમેશ્વરી ભગવંતો માંગળિક છે, યાને વો મંગલ હૈ. વો કૈસા હૈ? નિમિત્ત તરીકે, નિમિત્ત યે કહો યા વ્યવહાર સે કહો, એક હી બાત હૈ. પંચ પરમેશ્વરી ને ઓળખીને તેને નમસ્કાર કરતા શુભ પરિણામ થાય છે, ને પાપ ટળીને શાંત ભાવરૂપ પરિણામ થાય છે, તેથી તે મંગળ છે. એટલે પંચ પરમેશ્વરી મંગળ છે. આ સિવાય કુદેવાદીને વંદન કરવામાં કાંઈક મંદ કશાય હોય તેને અહીં શુભમાં ગણ્યો નથી, કેમ કે તેમાં તો મિથ્યાત્વની પુષ્ટિનો તીવ્ર અશુભ રાગ પડ્યો છે. દેખો કઈ લોગ એસા ભી કહેતે ના, ભાઈ તુમ ક્યું ઝઘડા કરતે હો, તુમ તો હઠી લોક હો, અપની બાત છોડતે નહીં હો. અરે ઉનકે ભગવાન હૈ તો ઉનકો નમસ્કાર કરને દો, તુમ તુમ્હારે ભગવાન કો નમસ્કાર કરો. ક્યો ઉનકા દ્વેષ કરતે હો, ક્યો ઉનકો મના કરતે હો, એસા પૂછ બોલતે ના લોગ, તુમ્હારા ક્યા બિગડતા હૈ? અરે પણ ભાઈ વો જો પર નમસ્કાર કર રહા હૈ વો તો સાથ મેં મિથ્યાત્વ કા ભી ઉસકો પાપ લગ રહા હૈ, ઓર હમ ઉસકો અનુમોદના દેંગે તો હમ પાપ સે બચેંગે કે નહીં? ખ્યાલ મેં આયા ના? દેખો ક્યા કહા. આ સિવાય કુદેવાદીને વંદન કરવામાં કાંઈક મંદ કશાય હોય તેને અહીં શુભમાં ગણ્યો નથી, તો એ કયો ભાવ છે? અશુભ ભાવ છે. કેમ કે તેમાં તો મિથ્યાત્વની પુષ્ટિનો તીવ્ર અશુભ ભાવ પડ્યો છે. વિતરાગ પંચ પરમેશ્વરીને ઓળખીને તેમનું બહુમાન કરતા પોતાને રાગ ટળીને શાંત પરિણામ થાય છે, તેટલું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે અને અશુભ ટળે છે. સુખ પ્રાપ્ત થાય છે અને ક્યાં વહા શુભ પરિણામ હોતે હૈ, ઇસલિયે ઉસકો કહા. હવે અનુપ્રેક્ષાનો અર્થ કહે છે. આ શાસ્ત્રમાં 12 ભાવનાઓનું વર્ણન છે. હાજી આજ લૌકિક સુખની વાત છે. ક્યાં બતાવો માઇક પર?
યહાં લખા ને પોતાનો રાગ ટળીને શાંત પરિણામ થાય છે તેટલું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. જીતના વિતરાગ ભાવ હૈ ઉતના સુખ હૈ.
હા, આપકો યે બતાના હૈ કે વિતરાગ પંચ પરમેશ્વરી કો પહેચાન લિયા, તો પહેચાન લેને સે ક્યા હોગા? કે તેમનું બહુમાન કરતા પોતાનો રાગ ટળીને, યાને જો ભાવ શુભ ભાવ હો રહે હૈ તો શુભ ભાવ ભી ટલ કર ઇસ જીવ કે સ્વયં કે શાંત પરિણામ હો જાતા હૈ, યાને વિતરાગ પરિણામ હો જાતે હૈ, સમતા વૃત્તિ શરૂ હો જાતી હૈ, ઉતના ઉને સુખ હૈ. और उस समय क्या हो रहा है, अशुभ भी टलता है। यानी जब शुभ चल रहा है तब भी अशुभ टल रहा है, और जब शुद्ध भाव हो रहे तब भी अशुभ टल रहा है। हवे अनुप्रेक्षानो अर्थ कहे छे, आ शास्त्र मां बार भावनानु वर्णन छे, आ अनित्य वगैरह बार भावनाओ तीर्थंकर भगवंतो भावे छे, गृहस्थाश्रम मां नित्यानंदी आत्माना भानपूर्वक शरीरादि ने अनित्यतानी भावना भावे छे। ये क्या कहते हैं, देखो यहाँ नाम कौन सा है, अनित्य भावना, तो ये सारा विश्व अनित्य है, ये बाल बच्चे हमारे, ये पैसा घर मकान सब जायदाद जो कुछ है वो सारी अनित्य वस्तुएं हैं, तो ऐसा करके हमें रोना नहीं आना चाहिए, ये दुख होने की बात नहीं है। यह वास्तविकता को बताते हुए वह भले ना अनित्य होवे, लेकिन उस समय मैं स्वयं कैसा हूँ कि मैं नित्य हूँ, इसलिए जब अपना स्वभाव की तरफ उपयोग जाएगा और अपने नित्य स्वभाव का आश्रय लेगा तो उसने अनित्य भावना सही रूप से जानी है, ऐसा कहने में आएगा। ये जो भावनाएं हैं उन भावनाओं के कारण से इस जीव को अपने स्वरूप में एकाग्रता करते हुए वितरागता की जागृति हो जाए, वितरागता प्रस्थापित हो जाए, इसलिए भावना भानी है। नहीं तो हाय हाय ये पैसा मेरा चला जाएगा, ये सब अनित्य है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बीवी है, ये मेरे माँ बाप है, ये रिश्तेदार सभी अनित्य है, अरे रे ये शरीर भी छूट के जाएगा, तो इसको आकुलता बढ़ेगी क्या, कम होगी? लेकिन जब ये कहेंगे कि इसके पीछे तू जो आकुलता कर रहा है, उसके पीछे जो तू कोई प्रेम कर रहा है, वह करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि वो अनित्य है, तो फिर हम क्या करें साहब? अरे नित्य ऐसा जो तेरा स्वभाव है, तेरा स्वरूप है, उसका आश्रय लेगा तो वह अनित्य वस्तुओं के तरफ तुम्हारा उपयोग जाएगा ही नहीं, ये बात बताना चाहिए। अभी आएगी वो बात आगे। यहाँ क्या लिखते हैं देखो, यहाँ तो पहले ही बताया था कि यहाँ तो लिख रहे आ अनित्य वगैरह बार भावनाओं तीर्थंकर भगवंतो भावे छे। ये तीर्थंकर भगवंत जो मुनि अवस्था में जाएंगे होते हैं उस समय वो भाते हैं। तीर्थंकर होने के बाद भाते होंगे कि नहीं दिव्या बहन? क्यों नहीं? हाँ वो कह रहे हैं, समझ में आया? नहीं समझे? वो बोल रहे वितराग हो गए हैं, अब थोड़ी थोड़ी हम वो मौनी भाषा भी सीख लिए हैं। आप शाम का भोजन करके आती के नहीं, तो जरा जास्ती करना ताकि आवाज भी जोर से निकले। ऐसा मत बोलना कि भोजन तो आहार वर्गणा का है और भाषा तो भाषा वर्गणा की है, दो वर्गणाओं में कौन सा अभाव है? अन्योन्याभाव है, तो एक दूसरे का कार्य करे ऐसी बात नहीं हो सकती है, तो आप कोई सही एडवाइस दे दो। तो क्या कह रहे देखो, तो कह रहे हैं तीर्थंकर भगवंतो भावे छे, क्या रहे जा रहे, परंतु बीजी नवी बात शू कहे छे कि गृहस्थाश्रम मां पन नित्यानंदी यानी नित्य आनंद स्वरूप ऐसा जो आत्मा है, ये आत्मा ना भान पूर्वक शरीर आदि नी अनित्यता नी भावना भावे छे। यानी उस समय ये शरीर अनित्य है लेकिन मैं नित्य हूँ, ये बात ध्यान में रखते हुए अनित्य भावना भावे छे। ध्रुव चैतन्य नी दृष्टि पूर्वक नी भावनाओं जो आ वर्णन छे, नित्य ध्रुव चिदानंद नी दृष्टि वगर नी अनित्य भावना यथार्थ होती नथी। बधु क्षणिक छे एवी एकली अनित्य भावना बुद्ध वगैरह भावी छे। क्या कहा समझ में नहीं आया? अपना जैन दर्शन कैसा है? अनेकांतात्मक है, यानी अनेक धर्म जो है एक वस्तु में उनको बताने वाला है, तो वह क्या कहेगा कि आत्मा कथंचित अनित्य है, यानी किसी अपेक्षा से अनित्य है। कौन सी अपेक्षा से? पर्याय अपेक्षा से। लेकिन द्रव्य या ध्रुवता की अपेक्षा से उसी आत्मा को उसी समय देखा जाए, जिस समय उसकी अनित्यता देख रहे हैं उसी समय वह नित्य भी है। तो ये दोनों ही जो है ना, क्या कहते हैं, आस्पेक्ट्स, तो दोनों ही एक साथ मौजूद होते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई ये कथनचित यानी किसी अपेक्षा से ऐसा है, लेकिन यह जो बौद्ध धर्मीय लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि ये द्रव्य कहो या वस्तु कहो क्षणिक ही है, टेम्पररी है, अनित्य है, सर्वथा अनित्य है, ऐसा मानते हैं। सर्वथा अनित्य हो ही नहीं सकती वस्तु, क्योंकि कोई भी द्रव्य या कोई भी पर्याय द्रव्य के बिना रहेगी नहीं। आप हमें बिना द्रव्य की कोई पर्याय बताओ साहब, विश्व में कोई भी पर्याय दिखाएं आप, तो उसमें वो किसी न किसी द्रव्य की पर्याय होगी। आपके बंगड़ी है हाथ में, तो कौन से द्रव्य की होगी, सोना की होगी या कांच की होगी? अरे दोनों ही पुद्गल द्रव्य है, तो पुद्गल द्रव्य का वह पुद्गल द्रव्य की वह पर्याय है। इस तरह वो क्या मानते हैं कि सब क्षणिक है, क्षणिक है, इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, बधु नीचे से तीसरी लाइन इस पैराग्राफ की, बधु क्षणिक छे एवी एकली अनित्य भावना बुद्ध वगैरह भावी छे ते तो अनित्य जागरिका छे, यानी अनित्य की ही बात बताने वाले हैं, देहादि अनित्य छे अने आत्मा ध्रुव नित्य छे एम जानी ने नित्य स्वभावना आश्रय पूर्वक भावना नु आ वर्णन छे। यानी हम केवल एक ही बाजू देखते हैं, अनित्य है, अध्रुव है, अशरण है, लेकिन उसके सामने कोई ध्रुव स्वरूप है, कोई शरण स्वरूप है, ये बात भूल जाते हैं। नित्य है ये अनुप्रेक्षानो सामान्य अर्थ तो वारंवार चिंतवन करवू ए छे, पण चिंतवन तो अनेक प्रकारना छे अने तेने करवा वाला पण अनेक छे, तेथी ए सर्वने भिन्न दर्शाववा माटे अहीं भव्य जनानंद जननी एवू विशेषण आयपू छे। यानी जो भव्यजन है उनको आनंद उत्पन्न कराने वाली ऐसी यह बारह भावनाएं हैं, एवू विशेषण आय पूछे। तेनाथी जे भव्य जीवों ने मोक्ष प्राप्ति निकट आवी हो तेमने आनंद उपजावा वाली एवी अनुप्रेक्षा कहिश। यानी ये अनुप्रेक्षा हम जो पढ़ने जा रहे हैं उससे हमें दुख हो जावे ऐसी बात नहीं है, तो हम उनके अनुसार वस्तु का स्वरूप समझकर अपने स्वरूप में एकाकार हो जाए, लीन हो जाए, तो उसको आनंद आए बिना रहेगा नहीं, ऐसा कह रहे। घना जीवो संसार ना व्यापार धंधा वगैरह नु वारंवार चिंतवन करे छे तेवी अनुप्रेक्षानी आ वात नथी। यानी जिसका जो धंधा होवे, क्या एक कुमार है और उसी का दूसरा भाई किसान है, तो किसान तो भगवान के पास गिड़गिड़ा के बोलेगा, भगवान जल्दी बारिश आवे हाँ तो मेरा फसल भी अच्छी तरह से निक जाए, निकल आए। दूसरा था कुमार, बोलता है, हे भगवान बारिश मत भेजना, तू बारिश डालेगा, बारिश गिराएगा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। क्यों साहब? क्योंकि मेरे मटके जो है वो तो गीले गीले ही रह जाएंगे, पिघल जाएंगे, तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। तो भगवान को अभी क्या करना चाहिए, ख्याल में आया? तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जे घना जीवो संसार ना व्यापार धंधा, तो कोई बोलता है शेयर बढ़ने चाहिए और कोई बोलता है गिर जाने चाहिए। क्यों? कोई बोलता है LIC निकालना चाहिए, तो बोलते हैं नहीं मत निकालो, अभी हमारा कमीशन कम हो गया है, धंधा व्यापार नो चिंतन करे ना, ये बात चल रही है। क्या कहा? तेवी अनुप्रेक्षा नहीं आवाज नथी, तेमज बुद्ध वगैरह एकली अनित्यता नी जे भावना करी छे तेवी पन आ वात नथी, पन आ तो ध्रुव चिदानंद स्वभावना आश्रय भव्य जीवों ने आत्मा नो आनंद देनारी अनुप्रेक्षाओं वर्णन छे। अभव्य जीव ने तो आवी भावना होती नथी, अभव्य जीवो तेमज अनंत संसारी भव्य जीवो शास्त्र वाँची ने विचार करे तेमा शुभ भाव छे, पन चिदानंद आत्माना भान वगर बार भावना होती नथी। माटे कहूं क्या निकट भव्य जीवो ने आनंद उपजावनारी भावना हूँ कहीश, छेमना संसार नो अंत नजीक आवी गयो छे, जेने विकारनी रुचि छूटी गई छे ने चिदानंद स्वभावनी रुचि थई छे, एवा भव्य जीवो ने आ बार वैराग्य भावनाओ आनंदनी उपजावनारी छे। आनंद तो आत्माना स्वभावना आश्रय छे, ते स्वभावना भान सहित आ भावनाओनु चिंतवन भव्य जीव ने आनंद जनक छे। जनक यानी समझ में आया, आनंद को उत्पन्न कराने वाला। वैसा जनक का नाम दूसरा भी होता, अर्थ दूसरा भी होता है, जनक यानी पिता को भी जनक कहते हैं। तो ये आनंद को पैदा करने वाला है। क्या ये बारह भावना का चिंतवन जो है वो आनंद जनक है। आ यथार्थ भावना करनारो अनंत संसारी न होय, जेने स्वभावना आश्रय सम्यक दर्शन पूर्वक आवी भावनाओ प्रकटि छे ने अल्पकाळे पूर्णता करवानो छे तेवा जीवोनी ज अहीं वात लीधी छे। सम्यक दर्शन पामीने पाछा पड़ी जाय ने अनंत संसारमां रखड़े एवा जीवोनी अहीं वात लीधी नथी, एवा जीवोनी वात अहीं लीधी नथी। माटे कह्युं के जेने मोक्ष प्राप्ति थवानुं टाणुं यानी चांस, क्या कहते हैं आप, संधि, मौका, हाँ, जेने मोक्ष प्राप्ति थवानुं टाणुं, अच्छा टाइम, चल टाइम नजीक आवी गयुं छे, एवा भव्य जीवोने आनंददायक बार भावनाओ कहीश। बीजू अहीं अनुप्रेक्षा एवं बहुवचन रूप पद छे, त्या अनुप्रेक्षा सामान्य चिंतवन एक प्रकार रूप छे, तो पन विशेषपणे तेना अनेक प्रकार छे। आ भावना सांभळता भव्य जीवोने मोक्ष मार्ग मां उत्साह उपजे छे। जो मोक्ष मार्ग नो ज उत्साह उपजावानी वात करी, पुण्यमां के रागमां जेने उत्साह आवे ते जीवे खरेखर आ भावनाओ सांभळी नथी। भावनाओ तो बार प्रकारनी छे, एमना नाम कहे छे, तथा ते भावनाओ भाववानी प्रेरणा करे छे। बीजू अहीं अनुप्रेक्षा एवं बहुवचन रूप पद छे, त्या अनुप्रेक्षा सामान्य चिंतवन एक प्रकार रूप छे, तो पन विशेषपणे तेना अनेक प्रकार छे। जो ऊपर लिखा वही बात यही यहां से ऊपर लिया, भव्य जीवों ने ते सांभळता ज मोक्ष मार्ग मां उत्साह उपजे छे, एवा चिंतवन ना संक्षेपताथी बार प्रकार छे, तेना नाम तथा भावनानी प्रेरणा बे गाथा सूत्रों मां कहे छे। बोलो जी।
अध्रुवम शरणं भणिता संसार एकमन्यत् अशुचित्वम् आश्रव संवरनामा निर्जरा लोकानुप्रेक्षा इति ज्ञात्वा भावयत् दुर्लभधर्मानुप्रेक्षा नित्यम् मनोवचनकाय शुद्ध्या एता उद्देशता भणिता।
देखो यहाँ पहली में पहली जो बताई है, तो अध्रुव दूसरी है अशरण अध्रुव यानी अनित्य जिसको हम कहते हैं अध्रुव यानी अनित्य ध्रुव यानी कायम टिकने वाले अध्रुव यानी कायम नहीं टिकने वाले नित्य यानी भी कायम रहने वाले अनित्य यानी जो कायम नहीं है ऐसी अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्यत्व और अशुचि आश्रय संवर निर्जरा लोक ये सब भावनाओं के नाम है तो यहाँ नीचे लिखते हैं दुर्लभ हाँ नीचे नीचे बोधि दुर्लभ भावना और धर्म हे भव्यात्म आटलाज अनुप्रेक्षाना नाम जिन देव कहे छे तेने सम्यक प्रकार थी जानी ने मनवचन काय शुद्ध करी ने आगळ कहीशू ते प्रमाणे तमे निरंतर भावो ते नाम क्या छे अध्रुव अशरण संसार एकत्व अन्यत्व असुचित्व आश्रय संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ अने धर्म ए बार छे अध्रुव कहो कि अनित्य कहो एक ही बात है क्या कहा ये दूसरे नंबर की भावना कौन सी है भाई अशरण और पहले नंबर की अच्छा दूसरा नाम हाँ देखो पहले तीन यहाँ पर देख के अध्रुव की जगह अनित्य बोलना है आपको कौन पढ़ के बताएगा बोलो बोलो पढ़ के हाँ और चौथा पांचवा और छठा जो नंबर वाली भावना है कौन बताएगा एक हाँ तुम बताएगा बोल 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 हाँ असुचित्व बराबर तो ये कौन से तीन बोली बहन चौथा पांचवा छठा बोलना है आपको हाँ एकत्व अन्यत्व और अशुचि है वो अशुचि ऐसा असुचित्व ये हो गए छह अभी आश्रय संवर और निर्जरा ये तो सब जानते हैं कौन से तीन बताए अच्छा पहले तीन का नाम क्या है अभी बिना देखे बोलना है हाँ बोलो हाँ अनित्य अशरण संसार तीन नंबर की कौन सी देखी अभी हमने हाँ बोलो बोलो संसार हाँ तो पहला अनित्य दूसरा है अशरण तीसरा है संसार अभी हम सब साथ में बोलेंगे तो आज ही याद करके जाएंगे हम हाँ पहला है अनित्य बोलो बोलो अनित्य सब लोग बोलो भाई एक ही बोलना है आपको अनित्य अशरण संसार ये कितने हुए तीन अभी चौथे का नाम है एकत्व अन्यत्व और असुचि असुचित्व कहो असुचि कहो एक ही है ये हो गए छह ये पांचवा नंबर कौन सा था हाँ याद करना है क्या नहीं नहीं तो छोड़ देंगे हम क्योंकि ये जब तक हम नाम तक नहीं याद आएंगे तो उसका भाव क्या ध्यान में रखेंगे अभी छे के छे कौन बोलेगा आप बोलेगी हाँ बोलो 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 अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्यत्व और असुचि असुचित्व चलो ठीक है कितने हो गए छह अब उल्टा कौन बोलेगा आप बोलेंगे हाँ इस अच्छा आप बोलो चलो असुचित्व अन्यत्व एकत्व संसार अशरण और अनित्य ख्याल में ऐसा हम किसी से कहीं भी एंगल से पूछेंगे तो हमें याद हो जाएगा तो कुछ तकलीफ नहीं है हाँ तुम पहले छह बोलना साहब हाँ 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 अनित्य अशरण संसार हाँ एकत्व અન્યત્વ ઓર અસુચિત્વ. અસુચિત વિરેશભાઈ આપ બોલેંગે? હા, અનિત્ય, અશરણ, સંસાર, હા, એકત્વ, અન્યત્વ ઓર અશુચિત્વ. દેખો ભાઈ, આજ તો હમ ભલે નહીં યાદ હોય, લેકિન કલ સબકો યાદ કરકે આને કા હે. હા, યે હમ તો છે, આજ તો સમજ ગયે. ઓર ભી પઢના હે આગે? હા બોલો બોલો, આગે કે તીન ડોક્ટર આપકો એવું નહીં. આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, યે તો તત્વો કે નામ હે. હા, ઓર અભી કોન સે રહે ગયે? કેવલ તીન રહે ગયે. હા, ક્યા ક્યા ક્યા? और आगे लास्ट कौन सी? धर्म भावना. हाँ, कौन सी तीन? लोक भावना कहो तो जल्दी ख्याल में आएगा. लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना. ये तो 12 याद हो गई ना अभी. अब आगे बढ़ते हैं. देखो देखो, ये 12 भावना ना नाम कया તેનું વિશેષ અર્થરૂપ કથન તો આગળ યથાસ્થાને થશે જ. વળી એ નામ સાર્થક છે, તેનો અર્થ શું? અધ્રુવ તો અનિત્યને કહીએ છીએ, જેમાં શરણપણું નથી તે અશરણ છે. શરણપણું નથી એ અશરણ છે. પરિભ્રમણને સંસાર કહીએ છીએ, જ્યાં બીજું કોઈ નથી તે એકત્વ છે. અને જ્યાં સર્વથી જુદાપણું છે તે અન્યત્વ છે. એ સમજમાં આ રહે ભાવ? હા, ક્યાં નામ? અમોલ, વાત ખ્યાલમાં આતી? દેખો દેખો, એસા કહેતે હૈ અનિત્ય કિસકો કહેના યા અધ્રુવ કિસકો કહેના? અધ્રુવ કો હી અનિત્ય કહેતે. યે કાયમ નહીં રહેતા હૈ, નિત્ય નહીં રહેતા હૈ, वह अध्रुव है. और क्या कहते हैं? जो शरण लेने योग्य नहीं है, जिसमें शरणपना ही नहीं है, वो क्या है? अशरण है. अभी हमारा मरण आ गया है तो हम किसकी शरण लेवे तो हमको बचाएगा? वो कौन से भगवान के पास जाना पड़ेगा? तो कहते विश्व का ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है कि जिसे हम शरण में जाए और वो हमें बचाए ले. तो हमें बिल्कुल कैंसर हो गया है तो कौन से डॉक्टर के पास जाने से हमारी मौत रुक जाएगी? हाँ, ख्याल में है ना? तो ये विश्व के सारे पदार्थ अशरण है. तो शरण किसकी लेना? तो शरण लेने योग्य एकमेव अपना स्वस्वभाव है, स्वयं का स्वरूप है. उसकी शरण लेने से क्या होगा? सम्यक दर्शन होगा और सप्त भयों का नाश होगा. ख्याल में? इसलिए क्या कह रहे हैं कि जेमा शरणपणू नथी ए अशरण छे. और जो परिभ्रमण चल रहा है उसको संसार कहा है. ये संसार कितने प्रकार के होते हैं दिव्याबेन? 5 प्रकार. नाम याद है? बोलो बोलो. वाह वाह वाह. हाँ, उन्होंने सही बताया. संसार 5 प्रकार के, जिसका दूसरा नाम ये भी है, परावर्तन, या यहाँ परिभ्रमण का है ना. परिवर्तन भी कहते हैं, संसार भी कहते हैं. तो जो हमने देवलाली में सीखा था, क्या? द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन. इसी को संसार कहेंगे कि द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, यानी वो परिभ्रमण जो हो रहा है उसको ही संसार कहा है. तो जहां बीजू कोई नथी ते एकत्व छे, यानी यहां ऐसा कहना चाहते हैं. अभी हम शॉर्ट में जरा उसको देखेंगे कि ये सिकंदर राजा यहां आया था अपने हिंदुस्तान में, और उसने यहाँ हिंदुस्तान को सब लूट घूट लिया और ऐसा माना कि मैं पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया हूँ। तो उनको एक मुनिराज मिले, तो मुनिराज मिले और उनको उन्होंने संबोधन किया, तू खाली हाथ आया है और खाली हाथ चला जाएगा। तो वो बात उसको इतनी भा गई, तो वो तो था सिकंदर यानी मोहम्मदन था मुगल, उसी जात का ग्रीक का किधर भी जो का होगा। तो उनके यहाँ तो क्या है, जनाजा निकलता है तो डोम डोम में ऐसा अंदर लेके जाते हैं। तो उसने कहा कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना कि दुनिया तो जाने कि मैं आया खाली हाथ और जा रहा हूँ खाली हाथ। तो मैं अकेला ही हूँ इस विश्व में, मेरा कुछ है नहीं। तो ये एकत्व भावना है, ख्याल में कि क्या लिखा, देखो यहाँ इधर क्या लिखा कि जा बीजू कोई नथी ते एकपणू छे, एकत्व छे, एकत्व एकत्व ने पणा एकत्व एकपणू छे। और दूसरी बात क्या बताते हैं, जा सर्वथी जुदापणू छे ते अन्यत्व छे। क्या कह रहे हैं कि यहाँ मैं सबसे जुदा हूँ और सब मैं अकेला ही हूँ एकत्व, सबसे जुदा हूँ वो अन्यत्व। मलिनता ने असुचित्व कहिए छे, यानी जो मलिनता है वह कैसा है, अपवित्र है, असुचि है, कर्मनु आवु ते आश्रव छे, कर्माश्रव रोकवो ते संवर छे, अने कर्मनु खरवु ते निर्जरा छे। जेमा छ द्रव्यों समुदाय छे ते लोक छे, अने अति कठिनता थी प्राप्त करिए ते दुर्लभ। यहाँ तो कौन सा दुर्लभपना बताना है कि जीव ने आज तक बोधि यानी ज्ञान यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं की, वो उसके लिए बोधि दुर्लभपना है। अने संसार थी जीव ने उद्धार करे ते वस्तु स्वरूप आदिक धर्म छे, ए प्रमाणे तेनो अर्थ छे। जावानी के ज्ञान ते सूजे लो कालो, सोवाणी मसकन मो सदा देत हो। तेजल बोलो।